शांति। बाप दादा की अनन्य रतन मधुबन का श्रृंगार, ब्राह्मण परिवार के सान आदरणीय राजयोगिनी सिलू दीदी जी का हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि इस योग पट्टी का आरंभ ऐसी महान आत्मा के आशीर्वचनों के साथ होने जा रहा है, जिनका मैं शॉर्ट में परिचय दूंगी। आप 1960 में 12 साल की अल्प आयु में ही अपने जन्म स्थान मुंबई में आपको परमात्म प्राप्ति का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। साकार मम्मा बाबा और दादियों की दिव्य पालना में पलते हुए, लौकिक अलौकिक पढ़ाई का सुंदर बैलेंस रखते हुए मुंबई विश्वविद्यालय में बीएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद 69 में आपने आपका समग्र जीवन 21 वर्ष की आयु में मानवता और प्रभु सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद मुंबई हैदराबाद काठमांडू सेवाओं के अतिरिक्त 1974 से 76 तक मॉरिशियस और कुछ अफ्रीकन देशों में ईश्वरीय सेवा कर अनेक राजयोग सेवा केंद्रों की स्थापना की। आपने पांचों ही महाद्वीपों में 75 देशों से भी अधिक देशों में भ्रमण किया है और विश्व की अनेक आत्माओं में आध्यात्मिक क्रांति के बीज बोकर उनके जीवन में सच्ची सुख शांति की अनुभूति कराई है। 1976 से आप मुख्यालय मधुबन घर में ही बेहद की सेवाएं दे रहे हैं। आप वरिष्ठ राजयोगा शिक्षिका के रूप में वर्षों से मधुबन में होने वाले राजयोग शिविर और भट्टियों का सुंदर रीति से संचालन कर रहे हैं और 23 में वुमन ऑफ एक्सलेंट अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया। आप ही वह महान आत्मा है जो पहले पहले टीवी की सेवाओं के माध्यम से ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त बनी और जी टीवी सोनी टीवी चैनल पर आपके वक्तव्य प्रसारित होते रहते हैं। वर्तमान समय आपके विविध कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी संस्था के अपने टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड पर नियमित आते रहते हैं। आपकी वाणी में स्वर कोकिल सी मिठास और माँ सरस्वती की ज्ञान वीणा की झंकार है। बाप दादा ने आपको सर्व पापों को हरने वाली, हरि का द्वार दिखाने वाली, हर की पौड़ी कहकर आपकी महिमा की है। आज तक भी आपके आवाज से रिकॉर्ड की गई अति लोकप्रिय राजयोग कमेंट्री सभी सेवा केंद्रों पर सुनाई जाती है, जिनको सुनकर भाई बहने गहन आत्म अनुभूति में खो जाते हैं। आप मुख्यालय तथा अन्य स्थानों पर आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलनों महासम्मेलनों में आप एक कुशल प्रवक्ता के रूप में अपने वक्तव्य रखते हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी इन तीनों भाषाओं में कुशलतापूर्वक ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के साथ साथ एक कुशल अनुवादक भी है। बाप-दादा मिलन के समय बाबा के महावाक्यों का बहुत ही सरल और सटीक अंग्रेजी भाषा में अनुवादन करके सुनाने की सेवाएं भी आप ही करते हो। आपकी ऐसी विशेषताओं के लिए स्वयं बाप दादा ने आपको अनेक वरदानों से सुसज्जित किया है और मधुबन बेहद घर में डबल विदेशी भाई बहनों की सेवा के लिए चुन लिया है। दीदी जी, आप परमात्मा का अमूल्य कोहिनूर हीरा हो, रूहानियत की खुशबू से भरपूर रूहे गुलाब हो और अपनी इस रूहानी खुशबू से संसार की रूहानी सेवा में अथक होकर सतत उपस्थित रहते हैं। ऐसी महान तपस्वी विद्या की देवी हम सबके बीच में आज उपस्थित है, जिनके मुख से आज हम इस योग तपस्या भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में सुनेंगे और सारी भट्टी के लिए सुंदर प्रेरणाएं और मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आदरणीय सिलू दीदी जी,
और जिन्होंने ये परिचय दिया वो आप हमारी पूनम बहन है। पूनम बहन, अपना परिचय थोड़ा दो जो सारी भट्टी का कोऑर्डिनेशन करेगी।
शरीर का नाम बीके पूनम बेन, बरोड़ा अटलाद्रा से। वैसे कई लोग जानते भी होंगे क्योंकि सभी आए हुए, कौन कौन आए हैं बरोड़ा, अनु दीदी और सभी आए हैं बरोड़ा, वो स्टेच्यू देखने के लिए आए थे, तभी सेंटर पे आए थे कई लोग। और बचपन से ही हम सभी पूरा परिवार ज्ञान में चलते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, अलौकिक मात पिता की कर्म भूमि, सर्व दादियों दादाओं की तपस्या भूमि, जहाँ आप सभी पधारे हो बहुत दूर से, झारखंड, कहाँ फसिस, धनबाद, धनबाद से आप सभी पधारे हो, तो हम सब मधुबन निवासी भाई बहनों की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा के बेहद घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। झारखंड, फिर भूल गई का, धनबाद, धन याद आएगा तो याद आ जाए। जी जी, तो धनबाद से बहुत दूर से आप आए हो, पहले तो ये बिहार होगा ना, फिर झारखंड बन गया, तो आप सभी मधुबन में भट्टी करने आए हो। तो भट्टी का मतलब क्या है? तपना। भट्टी का मतलब क्या है? परिवर्तन होना। भट्टी का मतलब क्या है? संस्कारों को बदलना। भट्टी माना आग, तो आग में जैसे सोना तपता है तो शुद्ध हो जाता है, आग में कोयला पकता है तो राख बन जाता है, आग में जब कोई टमाटर बैंगन आलू कठोर चीज पकती है तो वो मुलायम हो जाती है, और आग में कोई ऐसी कमजोर चीज मिट्टी की ईंट पकती है तो वो एकदम मजबूत ईंट बन जाती है। अगर उसमें किचरा पड़ता है आग में तो वो जलकर कार्बन बन जाकर उड़ जाता है। तो आग ये भट्टी का एक स्वरूप है। तो आप सब भी भट्टी में आए हो पकने लिए, शुद्ध होने लिए, परिवर्तन होने लिए, ऐसे है ना। जन्म जन्मांतर की मैल आत्मा पर चढ़ गई है और ये मधुबन का पवित्र वातावरण, तपस्या का वातावरण, इस जो मैल चढ़ गई है उसको धुलाई करता है। क्योंकि दशकों से हमारी दादियों ने यहाँ तपस्या की और इस वातावरण को इतना पवित्र बनाया है, तो ऐसे स्थान पर आप सभी आए हो और जैसे ही आप यहाँ पहुँचे आपको अकोमोडेशन मिली, आपको यह एक विजय माला पहनाई गई जिसमें ठप्पा लगाया, भट्टी का नाम आपने पढ़ा होगा, डबल लाइट योग साधना, डबल लाइट तपस्या भट्टी क्या है, योग डबल लाइट पढ़ा आपने, क्या लिखा है, डबल लाइट योग साधना तपस्या भट्टी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो डबल लाइट बनने आए हो और फिर साथ में पकने आए हो, सारी मैल निकालने आए हो, शुद्ध होने आए हो, शक्तिशाली होने आए हो। तो डबल लाइट कैसे बनेंगे, क्या क्या बोझ है हमारे ऊपर वो पहले देखेंगे, क्योंकि डबल लाइट होने के लिए सारा वो बोझ उतारना है। हम वास्तव में बोझ रहित थे, आत्मा एक चमकता हुआ सितारा, कितनी हल्की, इसलिए डबल लाइट कहते हैं, एक प्रकाश स्वरूप और दूसरा बहुत हल्की। तो इतनी प्रकाश स्वरूप आत्मा, इतनी हल्की आत्मा, जब हम परम धाम में थे तो कैसी हमारी स्थिति थी, फिर इस सृष्टि मंच पर आए तो भी कितनी ऊंची स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र में आते आते विकारों की मैल चढ़ गई और आज कलयुग में इतनी तमो प्रधान हो चुकी है। अब फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बाबा हमको पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दी हमने, उन सब को खत्म करना है, नष्ट करना है, समाप्त करना है, निकाल देना है। तो उसमें बहुत मिसाल दिए जाते हैं कैसे खत्म करना है, क्योंकि आग में पकना है। तो एक बहुत बड़ा मिसाल दिया जाता है कि वो जो दिव्यता है वो आपके पास ही है, लेकिन उसके ऊपर मैल चढ़ गई, वो निकालना है। दिव्यता तो है ही, परंतु उस मैल को निकालना है, उस भारीपन को निकालना है। तो जैसे बताते हैं ना कि एक पत्थर की शिला है, माना पत्थर है, अब उसमें से मूर्ति बनानी है, लेकिन जो मूर्तिकार होता है वो उस पत्थर को नहीं देखता है, वो क्या देखता है, उस पत्थर के अंदर मूर्ति को देखता है। तो उसको और कुछ नहीं करना है, बस उस पत्थर से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जिस जो मूर्ति बनने में बाधक है, उनको निकालता जाता है, निकालता जाता है, निकालता जाता है हथौड़ी और छेने से, और अंदर ही अंदर वो मूर्ति को शेप देता है और एक सुंदर मूर्ति तैयार हो जाती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीजें थी उस पत्थर पर वो सब हट गई। तो यहां भी हम कहते हैं जो एक्स्ट्रा चीजें जुड़ गई सारे कल्प में वो खत्म करना है। फिर दूसरा मिसाल दिया जाता है, आसाम में ऑयल मिल्स है, ये ऑयल के रिफाइनरीज है, तो तेल निकलता है धरती से। झारखंड में भी है, वहां भी है तेल निकलता है, वहां है नहीं? हाँ अच्छा, कोयला है, हाँ झारखंड मुझे याद है कोयला है। तो कैसे कोयला निकालते अंदर से, लेकिन आसाम में तेल के कुएं हैं, तो जो तेल निकलता है धरती से वो कितना मैला होता है, कितना मैला होता है, कितना काला होता है। लेकिन क्या करते हैं रिफाइनरी में, क्या होता है, उसको शुद्ध किया जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये कैसे शुद्ध होगा, लेकिन उसकी विधि है। और कैसे करते हैं, उसमें से किचरा निकालते हैं, तो क्या क्या निकलता है। मैं गई हूँ आसाम में, वहाँ पर हमने देखा है कैसे रिफाइनरी से वो तेल जो इतना काला काला होता है वो कैसे शुद्ध होता जाता है। तो पहली चीज क्या निकलती है उसमें से, एकदम काला डामर, डामर होता है ना जो रोड जिससे बनते हैं, तो वो निकलता है डामर, कितना काला होता है। तो वो काला डामर फिर वो रोड बनाने के काम आता है। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो दूसरी चीज जो अभी थोड़ा पतला हुआ वो एकदम काला काला जो तेल है, तो फिर उसमें से वैक्स निकलता है, वैक्स मोम, और वो मोम निकालते जाते हैं, वो चिकनाहट चिकनाहट वो मोम निकलती जाती है, और उसमें से तो कितने सुंदर सुंदर मोमबत्तियां बनती है ना, वो वेस्ट नहीं हो जाता, उससे उसका लाभ लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या निकलती है, तो थोड़ा पतला हुआ फिर भी चिकना बहुत है, तो फिर उसमें से ऐसा तेल निकलता है जिससे साबुन बनाते हैं, क्योंकि साबुन में भी तेल चाहिए। तो उसकी जो भी चीजें हैं, ये केरोसिन या जो भी, बहुत चीजें निकलती है, 16 चीजें निकलती है, हमको दिखाई थी, अभी याद तो नहीं है पर कितनी चीजें। और जो अंत में निकलता है वो हवाई जहाज का पेट्रोल निकलता है, एविएशन फ्यूल कहते हैं। तो पहला क्या है, एकदम काला, और लास्ट में क्या निकलता है, वो हवाई जहाज का पेट्रोल। अब इतना हजारों लीटर पेट्रोल चाहिए दूर ले जाने लिए, भारत से अमेरिका जाने लिए सीधी फ्लाइट होती है 16 घंटा, और वो पेट्रोल चाहिए तो भारी होगा तो कैसे काम चलेगा। तो उसको हल्का करते, तो वो एविएशन फ्यूल हमको दिखाया, जो हवाई जहाज में पेट्रोल यूज होता है वो पानी से भी हल्का है, पानी का भी बोझ होता है ना थोड़ा, तो पकड़ते तो पता चलता है। तो उसमें तो पता भी नहीं चला कि हमारे हाथ में वो तेल भी है, वो चिकनाहट खत्म, वो सब कुछ खत्म, और इतना शुद्ध, इतना हल्का वो पेट्रोल होता है जो हवाई जहाज में काम आता है, डीजल पेट्रोल गाड़ियों में काम आता है, फिर भी थोड़ा किचरा पड़ सकता है, पर हवाई जहाज के पेट्रोल में किचरा पड़ जाए तो वहीं पर रुक जाए। तो इसीलिए इतना रिफाइन पेट्रोल होता है तो अंदर का सब किचरा निकल जाता है। तो बाबा हमको ऐसे रिफाइंड बनाना चाहते हैं, इसीलिए बाबा हर बार हमें ड्रिल कराते हैं। तो ड्रिल से क्या होता है, हम रिफाइन होते जाते किचरा निकलता जाता है। जब कमेंट्री देते हैं तो कमेंट्री में वास्तव में ये नहीं कहते हैं, हाँ मैं अशुद्ध आत्मा नहीं हूँ, मैं दुखी आत्मा नहीं हूँ, मैं पतित आत्मा नहीं हूँ, ये नहीं शब्द नहीं यूज करते। क्या यूज करते हैं? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं देवता आत्मा हूँ, जो पॉजिटिव चीजें सकारात्मक बातें वो यूज करते हैं। तो सकारात्मक शब्द क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो नेगेटिव निकल जाएगा, सकारात्मक यूज करने से जो नकारात्मक चीजें हैं वो निकलती जाती है। क्योंकि बुद्धि में है कि मुझे इतना शुद्ध बनना है, तो शुद्ध कैसे बनेंगे? अब मैं आत्मा अशांत नहीं हूँ, अशांत नहीं हूँ, अशांत नहीं हूँ, ये कहने से शांत नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे शांत? हाँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जो हमें बनना है उसको याद करना है, जो बनना ही नहीं है उसको याद क्यों करेंगे? मैं अशांत नहीं हूँ, मना पहले अशांत याद किया, फिर अशांत को भूलना है। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि कई कहते हैं ना दुनिया में, मैं बहुत अशांत हूँ, बहुत अशांत हूँ, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, अशांत हूँ। तो अशांत हूँ कहने से शांति नहीं आएगी, लेकिन जो मैं हूँ वो सोचने से शांति आएगी। शांति हमारी सोच में है, खुशी हमारी सोच में है। इसीलिए कहा जाता है आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर आप सोचेंगे मैं बहुत अशांत हूँ तो कभी भी शांति का अनुभव नहीं करेंगे। और आप कहेंगे मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो एक सेकंड में शांति का अनुभव करेंगे। इसीलिए बाबा हमेशा डबल ओम शांति कहते हैं। शिव बाबा भी ओम शांति कहते हैं, वो शांति का सागर है। ब्रह्मा बाबा भी ओम शांति कहते हैं क्योंकि वो आत्मा भी शांत स्वरूप है। फिर हम बच्चे भी कहते हैं, और कई बार जब शांति पाठ भी करते हैं तो तीन बार शांति कहते हैं ना अंत में, ओम शांति शांति शांति। तो तीन बार शांति क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा का स्वभाव शांति, आत्मा का धाम शांति का धाम, आत्मा का पिता शांति का सागर। अब ये जैसे ही मैंने सोचा कि मेरा स्वभाव शांति, मेरा धाम शांति का धाम, मेरा पिता शांति का सागर, तो मैं अशांत थोड़ी हूँ। कोई व्यक्ति के पास बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत उसकी जमीन है, उसका पिता भी बहुत ही धनवान है, अब वो थोड़ी कहेगा कि मैं तो गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। तो वो क्या कहेगा? मैं धनवान हूँ, मैं भी हूँ, मेरा पिता भी है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो जो मैं वास्तव में हूँ वही हम कहते हैं। तो इसलिए जैसा सोचेंगे वैसा अनुभव करेंगे। अगर ये सोचेंगे मैं बहुत अशांत हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं अशांत हूँ, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमको शांति नहीं दे सकेगी। और अगर हम ये सोचते हैं मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम का वासी, शांति के सागर, शिव पिता की संतान, तो जो शांति अनुभव करेंगे उससे कोई भी उस शांति को निकाल नहीं सकता, हटा नहीं सकता। तो न कोई शांति दे सकता है, न कोई शांति हटा सकता, ये सब हमारे मन की स्थिति है। इसीलिए कहते हैं जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अब हम सोचते हैं मैं एक पवित्र आत्मा हूं, तो कोई कहे मैं पवित्र तो हूं नहीं, है ना, पवित्र तो हूं नहीं, मैं कैसे कहूं मैं पवित्र आत्मा हूं। लेकिन वो पवित्रता अनुभव करने के लिए पहले सोचना पड़ेगा, जैसे मूर्तिकार को अंदर में मूर्ति देखनी पड़ेगी, तभी तो वो किचरा निकालेगा ना। उस पेट्रोल के अंदर वो जो हवाई जहाज का पेट्रोल है वो देखना होता है, तभी तो और चीजें निकल जाएगी और वो पेट्रोल सामने आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, वो ओरिजिनल स्वरूप को याद करो। तो जो पांच स्वरूप भी बाबा बताते हैं उसमें वो पांचों स्वरूप पॉजिटिव स्वरूप है। मैं आत्मा परम धाम में कैसी हूं, एकदम सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति सितारा हूं। मैं सतयुग में कैसी हूं, यहाँ देवता हूं, सर्वगुण संपन्न हूं। फिर द्वापर में मैं पूज्य स्वरूप हूं, द्वापर में मैं पतित बनी, ऐसा नहीं सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मैं पूज्य स्वरूप हूं। फिर संगम पर आते ऐसे नहीं सोचते मैं तो कलयुग में शूद्र थी, नहीं, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूं। फिर फरिश्ता बनने वाली हूं, फिर हाँ देवता बनेंगे। तो ये जो पांच स्वरूप की ये स्मृति भी वास्तव में जो पॉजिटिव संकल्प है वो हम मन में लाते और उस स्वरूप का अनुभव करते हैं। लेकिन फिर बाबा ये भी बताते हैं कि पहले तो शूद्र थे, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना है कि बरोबर हम कलयुग में क्या थे, शूद्र थे। शूद्र थे ना कि नहीं थे, हा? थे, भले अभी लज्जा आती है कहना भी, कहने में भी, लेकिन थे तो सही ना, क्योंकि विकारों से ग्रसित थे। लेकिन जैसे ही हमें आत्मा का परिचय मिला, वो दृष्टि हमारी बदली, आत्मा समझा, आत्मा को देखा, आत्मा को पहचाना, तो दृष्टि वृत्ति स्मृति एकदम बदल गई, एक सेकंड में बदल गई। बस एक संकल्प आया, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। जो पहले मैं देह हूं, ये देह है, ये समझते थे, फिर रिश्ते नाते लौकिक ये सब बुद्धि में आ जाता था, व्यक्ति वस्तु वैभव सब सब बुद्धि में आ जाता था, इतना व्यर्थ सब बुद्धि में आ जाता था, वो एक सेकंड में हट गया, मैं आत्मा, ये आत्मा, बस आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा ने यही तो किया। शिव बाबा की जब प्रवेशता हुई तो सबसे पहले उनको यही कहा, तुम आत्मा हो। तो इतना बाबा को नशा चढ़ गया, मैं आत्मा हूं, इतना नशा कि वो जिसको भी देखता था वो भी ये आत्मा है, ये आत्मा है, यशोदा आत्मा है, बाबा की लौकिक युगल। तो बाबा उसको कैसे देखता था, ये आत्मा यशोदा आत्मा है, राधिका बाबा की बहू थी, राधिका आत्मा है। तो हर एक को वो दीवारों पर लिखता था, राधिका आत्मा यशोदा आत्मा, ताकि वो खुद अभ्यास करता था और वो लोग भी पढ़े, राधिका भी पढ़े यशोदा भी पढ़े कि वो आत्मा है, वो आत्मा है, और बाबा उनको उस रूप में देखते हैं। तो आत्मा का पाठ इतना पक्का हुआ यज्ञ में, शुरुआत में यही था, परमात्मा का इतना नहीं था, खुद खुदा वो कुछ सही रूप से भी नहीं थी समझ, लेकिन आत्मा का पाठ बहुत पक्का था। तो जैसे ये पाठ मिला तो आत्मा का शुद्धिकरण शुरू हुआ, शुद्धिकरण शुरू हुआ, और जैसे शुरू हुआ शुद्धिकरण, हल्कापन शुरू हुआ, ऐसे ही कहेंगे ना। देखो किसका मोबाइल बज रहा है, आपको बहन जी ने बोला होगा ना, 3 M को खत्म करना है, मन का मौन, मुख का मौन और मोबाइल का मौन। या मोबाइल नहीं बजना चाहिए, अंदर ही जैसे आओ उसके पहले ही उसको स्विच ऑफ कर दो या साइलेंस पर रख दो, परंतु यहाँ आवाज नहीं आना चाहिए, ना ही कोई जो आपका ट्रैफिक कंट्रोल का आवाज है वो भी नहीं आना चाहिए, यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल बचता है अपने अपने समय पर। आप लोगों का ट्रैफिक कंट्रोल एक मिनट आधा मिनट कई सेकंड अलग अलग होगा, तो अनेकों के ट्रैफिक कंट्रोल बजने लगते हैं, इसीलिए बिल्कुल यहाँ नहीं बजना चाहिए, बंद ही रख कर देना। आपको बताया होगा ना, तीन दिन एकदम मौन हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए तो बाबा हमें जो ड्रिल सिखाते हैं, उस ड्रिल में भी अंदर आओ, मैं आत्मा, फिर कर्म करो, तो कर्म योगी की स्थिति बन जाएगी। तो ये भी एक ड्रिल है, ये भी एक एक्सरसाइज है, और अंत में बाबा कहते यही काम आएगा, पहला पाठ और अंतिम पाठ यही होगा। पहला पाठ भी मैं आत्मा हूँ और अंतिम पाठ भी, जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो भी यही पाठ होगा, मैं आत्मा हूँ। हाँ, बाबा कई बार बताते कि सब कुछ अचानक होना है, अचानक भी होना है, उसके लिए एवर रेडी रहना है, परंतु एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आपका ये टॉपिक भी है इस भट्टी में, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, ये बाबा कई मुरलियों में कहते रहते हैं। परंतु उस दुनिया में जो परीक्षाएं होती है, वो परीक्षाएं तो ऐसी होती है कि हमें पता है वो एग्जाम कहाँ होगा, कितने बजे होगा, कितने घंटे का पेपर है, और आदि आदि सब पता होता है, सिर्फ प्रश्न क्या है वो पता नहीं होता है। आजकल तो प्रश्न भी लीक आउट हो जाते हैं, तो लेकिन वो पता नहीं होना चाहिए, बाकी सब पता है ना, कहाँ होगा, कैसे होगा, बाकी प्रश्न का पता नहीं। पर यहाँ इसका उल्टा है, प्रश्न का पता है लेकिन वो कब होगा, कहाँ होगा, कितने समय के अंदर होगा, किस स्थिति में होगा, वो पता नहीं। और वो प्रश्न क्या है, एक सेकेंड का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव, हाँ या ना, बस हाँ या ना, वही आपका प्रश्न है। कौन सा, कि अंत मति सो गति, अंत में किसकी याद आई। इसीलिए अंत मति सो गति का बड़ा महत्व है, अंत में कोई भी देहधारी याद न आए, एक शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद न आए अंत में, तब कहेंगे पास। हा? अंत में केवल शिव बाबा आया तो टिक मार्क, पास हो गए, और कुछ याद आया तो फेल। तो वो एक सेकंड का पेपर होगा, लेकिन वो कब होगा वो पता नहीं है ना। इस पर कितने सारे छोटे छोटे जोक्स बन जाते हैं। एक व्यक्ति गया अपने गुरु के पास, तो गुरु को कहता है कि मुझे, मेरा मन बहुत भटकता है, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं, कैसे मेरा मन शांत होगा। तो गुरु ने उनको यही कहा, हाँ मतलब उसने कहा कि मैं, मुझे उपराम होना है लेकिन कैसे हूँ। तो गुरु ने उनको कहा कि मरने से पहले एक दिन, हाँ मरने से एक दिन पहले आप बस एक भगवान को याद करना, बस बाकी तो मन तो भटकेगा, एक दिन पहले मरने से। अब वो कब मरेगा ये तो पता ही नहीं है, कब मरेगा, तो मरने से एक दिन पहले तो कैसे पता चलेगा मरने का दिन कौन सा है। तो हर वक्त हमें याद करना है, क्या नहीं याद करना है वो नहीं सोचना है ना। वो भी कई चुटकुले हैं कि एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, बोला मेरा मन बहुत भटकता है। तो गुरु ने उनको मंत्र दिया कि ये मंत्र का जाप करना तो आपका मन नहीं भटकेगा, लेकिन ये मंत्र तब काम आएगा जब आप मंत्र जाप करते समय बंदर को याद नहीं करना। अब क्या हुआ बंदर को याद नहीं करना है तो बुद्धि में क्या आएगा, बंदर ही याद आएगा, बंदर को याद नहीं करना है, बंदर को याद नहीं करना, तो मंत्र तो भूल ही गया, बंदर ही याद आया। तो जो याद नहीं करना है उसका सोचना भी क्यों, जिस रास्ते जाना नहीं है उस रास्ते का पूछना भी क्यों, है ना, जहाँ जाना होता है वही पूछना है। तो हम ब्राह्मण तो बने, परिचय मिला, बाबा का परिचय मिला, कैसे आत्मा समझकर शिव बाबा से सब संबंध जोड़ना है ये पता चला, और नियम मर्यादाएं धारणाएं वो सब पता चली, तो फिर हम उससे ब्राह्मण तो बन गए। अभी कहेंगे ना हम सब ब्राह्मण हैं, हाँ यही कहेंगे हम सब ब्राह्मण हैं, कोई शूद्र तो नहीं बैठा है ना यहाँ, सब ब्राह्मण हैं, क्योंकि अंदर में ये दृढ़ संकल्प किया है कि हम पवित्र योगी जीवन जिएंगे, हम विकारों को जीत रहे हैं, हमको अभी घर जाना है, हमारे सब संबंध एक शिव बाबा के साथ है। तो जैसे ही हम ब्राह्मण बने तो ये हमारा पहला कदम था। ब्राह्मण की क्वालिफिकेशंस क्या होती है वो भी बाबा ने बताई है, दुनिया में भी शास्त्रों में ब्राह्मण की क्वालिफिकेशंस बताई गई है। ब्राह्मण किसको कहेंगे? ब्राह्मण उसको कहेंगे जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो। ब्रह्म ज्ञान माना ऊंचे से ऊंचा भगवान का दिया हुआ ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान। ब्राह्मण उसे कहेंगे जिसके जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता हो, जो ब्रह्मा से संबंधित है, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है ना ब्राह्मण, तो ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म मुहूर्त में वो उठता हो, जब भोगी सब सोते हैं योगी जागते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये भी ब्राह्मण की एक निशानी है। ब्राह्मण तीसरा ब्राह्मण उसको कहेंगे जो ब्रह्मा भोजन स्वीकार करे, शुद्ध भोजन बाबा की याद में पकाया हुआ, भोग लगाया हुआ, वो ब्रह्मा भोजन बन जाता है, तो शुद्ध भोजन स्वीकार करे। फिर ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्रह्मा जैसा आचरण करे, तो उसको ब्रह्मचर्य कह दिया कि आचरण उसका ब्रह्मा जैसा हो, तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसको फॉलो करना है तो ब्राह्मण कहलाएंगे। ब्राह्मण उसको कहेंगे जो हमेशा बाबा कहते कच्छ में कुरम, कुरम माना किताब, तो ब्राह्मणों के जो ये बगल में क्या होता है शास्त्र होते हैं, हमेशा जैसे मिलेगा वो कोई शास्त्र उठा वो पढ़ते हैं, हमेशा उनके साथ होता है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करता है, तो धर्म का ज्ञान ब्राह्मण देता है, तो वो कच्छ में कुरम। फिर ब्राह्मण वो जो पढ़े और पढ़ाए, खुद पढ़े और दूसरों को भी सिखाए, दूसरों को पढ़ाए, मंत्र खुद भी जाप करे और दूसरों को भी मंत्र दे। फिर ब्राह्मण वो जो यज्ञ करे और यज्ञ कराए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वो तो जब तिल घी स्वाहा करते, पर ब्राह्मण वो जो अपनी बुराइयां भी स्वाहा करे तो सबको भी कहे स्वाहा करो। इसलिए देखो बाबा ने क्या कहा, शिवरात्रि की मुरली जब चलाई बाबा की पिछले संडे को, तो शिव बाबा के अवतरण के साथ और किसका अवतरण हो गया, ब्रह्मा का भी अवतरण हो गया, तो ब्राह्मणों का भी अवतरण हो गया, क्योंकि बिना ब्राह्मण के यज्ञ कैसे चलेगा, तो इसीलिए यज्ञ रचा बाबा ने तो ब्राह्मण तो चाहिए ना, तो इसीलिए ब्रह्मा को रचा प्रवेश करके, फिर उनके द्वारा ज्ञान दिया और ब्राह्मण रचे तो यज्ञ चल पड़ा। तो इसीलिए ब्राह्मण की जो क्वालिफिकेशंस है वो सब हमारे अंदर आती गई, लेकिन ब्राह्मण्स के बाद हमें बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, तो बाप समान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बाबा ने तपस्या की वो हमें भी करनी होगी। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की हर आज्ञा का पालन किया, हर आज्ञा का पालन किया, तभी तो यज्ञ स्थापित हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, माताओं बहनों के आगे वो उनको एक ट्रस्ट बना लिया और खुद ट्रस्टी हो गए और विल कर दिया उन बहनों के नाम पर। अब बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे हम भी ऐसे करें, लेकिन ये ब्रह्मा बाबा ने बीज डाला, सबसे पहला बीज ब्रह्मा बाबा ने डाला, अपना तन मन धन चल अचल प्रॉपर्टी सब बहनों के नाम कर दिया। फिर बाबा को फॉलो किया कईयों ने, तभी तो यज्ञ बना 14 साल। उस समय बाहर की तो कोई आवत थी नहीं, कोई आमदनी बाहर से तो आई नहीं, सब जो भी जो भाई बहनों ने यज्ञ में स्वाहा किया वो 14 साल चला। और फिर जब भारत में आए तो बेगरी पाठ शुरू हुआ, क्योंकि वो तो खत्म हो गया। लेकिन वो 14 साल का जो पहला बीज वो ब्रह्मा बाबा ने डाला। तो आज हम नशे से कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जो बीज डाला, वो बीज तन का, मन का, धन का, उस बीज से इतना बड़ा पेड़ बन गया है जो 140 देशों में बाबा की सेवाएं चल रही है। और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित है, और आप जैसे लाखों परिवार बाबा के नियमित विद्यार्थी बन के पढ़ाई कर रहे हैं। पर बीज किसने डाला? एक ब्रह्मा बाबा ने, एक बीज। बीज तो कितना छोटा होता है, पर वृक्ष उसका कितना बड़ा होता है। तो वो तो शुरुआत थी। और कैसे ब्रह्मा बाबा को ये अनुभव हुआ कि मुझे फरिश्ता बनना है, वो भी गुलजार दादी के द्वारा। गुलजार दादी जैसे ही यज्ञ में आई, 9 साल की थी, आते ही साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण का साक्षात्कार। वो साक्षात्कार करती थी गुलजार दादी, वो आत्मा थी जिसने पहले पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया। उसके पहले और साक्षात्कार कईयों ने किए, स्वर्ग का साक्षात्कार करते थे, परमधाम का साक्षात्कार करते थे, विनाश का साक्षात्कार बहुतों ने किया। और फिर बाबा उनको कहते थे वो यहाँ ड्रामा करके दिखाओ जो आपने साक्षात्कार में किया देखा। लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किसी को नहीं हुआ था। तो गुलजार दादी पहली आत्मा थी जिसने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया। और उसने क्या देखा? एक सफेद सफेद दुनिया, जैसे रुई होती है ना, रुई हवाई जहाज में जाते हैं तो जैसे बादल कैसे दिखाई देते, रुई की तरह। तो ऐसी दुनिया, या जैसे फॉग में हम यहाँ ना, अभी फॉग देखो बहुत आ जाएगी, तो ऐसे लगता है जैसे सूक्ष्म वतन में सैर कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। सवेरे तो बहुत होता है, ओम शांति भवन भी दिखाई नहीं देता यहाँ से, इतना फॉग होता है। तो जैसे सूक्ष्म वतन में सैर करे, बादलों के बीच में सैर कर रहे हैं। तो ये साक्षात्कार उनको हुआ। और इतनी सफेद सफेद हजार चांद की जो चांदनी है, अगर उनको मिलाया जाए तो कैसा वातावरण बन जाएगा उस चांदनी का, वो अनुभव किया बादलों के बीच में। और उसमें ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप देखा। पर जो संपूर्ण रूप देखा वो तो एकदम जैसे लाइट लाइट का स्वरूप देखा। तो पहले तो वो डर गई, घबरा गई कि ये क्या देखा, क्योंकि हड्डी मांस का शरीर तो सबने देखा है, लेकिन लाइट का शरीर वो तो देखा नहीं था कभी। तो डर गई और डर के मारे वापस आ गई। हाँ, वो ध्यान में तो गई लेकिन वापस आ गई। तो जब वापस आ गई तो वो बाबा के पास गई और कई बातें, फिर बाबा को कहा, बाबा हमने वो ये ऐसा देखा, आपका बिल्कुल लाइट लाइट का संपूर्ण स्वरूप देखा। पर बाबा मैं तो डर गई। तो बाबा ने कहा, अच्छा बाबा का लाइट का स्वरूप देखा, आपने उनसे पूछा नहीं कि आप कौन हो? तो कहा, बिल्कुल आप जैसा ही चेहरा था, बिल्कुल जैसे लाइट, परंतु फिगर तो मनुष्य का ही होता है लेकिन लाइट में। तो बाबा ने कहा, अभी फिर से जाओ और वो स्वरूप आपको दिखाई दे तो उनसे पूछो आप कौन हो। तो फिर से गई, और फिर से गई तो फिर वो स्वरूप देखा। तो बाबा की श्रीमत थी कि आप उनसे पूछो आप कौन हो। तो उनसे पूछा, तब उस स्वरूप ने बताया कि मैं ब्रह्मा का संपूर्ण रूप हूं, और ये ब्रह्मा संपूर्ण बन करके ये बनेगा। बस जैसे ब्रह्मा बाबा को ये पता चला कि कि मेरा संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है, मेरा वो फरिश्ता स्वरूप वहाँ है, तो बस बाबा की बुद्धि उसी में चली गई, मुझे फरिश्ता बनना है, लाइट का आकार लेना है। तो फरिश्ता बनने के लिए फिर बाबा की सारी मुरलियाँ चलती थी, तब लाइट बनना है, लाइट स्वरूप बनना है, हल्का बनना है। तो जैसे बाबा की ये मुरलियाँ चलती थी तो बाबा धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते डबल लाइट फरिश्ता बन गए, सूक्ष्म वतनवासी बन गए, संपूर्ण बन गए। तो संपूर्ण भी बनना है और संपन्न भी बनना है, दोनों में क्या अंतर है? संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, तो दोनों में अंतर क्या है? हम देवताओं के लिए कहते हैं ना, संपन्न भी है संपूर्ण भी है, उनकी महिमा क्या गाते हैं, सर्व गुण संपन्न, फिर 16 कला संपूर्ण, तो संपन्न भी और संपूर्ण भी, तो सर्व गुण संपन्न। तो संपन्न किसमें बनना है? गुणों में संपन्न। और 16 कला संपूर्ण माना, कला माना पवित्रता की कलाएं, जैसे चंद्रमा की भी कलाएं होती है ना, तो कलाएं बढ़ती जाती है। 16वें दिन कैसे अमावस्या पर कोई कला नहीं, पर धीरे 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 थोड़ी 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 कला आती आ जाती है, और फिर पूर्णमासी की रात फुल मून। तो जब पूर्णमासी की रात है तो वो संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। तो संपन्न किस में? लाइट में, प्रकाश में वो संपन्न है, दूसरे दिनों में वो प्रकाश में संपन्न नहीं है। और संपूर्ण भी है, आकार में भी संपूर्ण, गोलाकार, बाकी दिन तो थोड़ा थोड़ा कम। तो प्रकाश में भी संपन्न और आकार में संपूर्ण। तो यहाँ सर्व गुणों में संपन्न, जो भी दैवी गुण है उनमें संपन्न, और पवित्रता की कलाओं में संपूर्ण, क्योंकि पवित्रता की भी स्टेजेस है। आज भी बाबा ने कहा पवित्रता की स्टेजेस में क्या होता है, सेमी भी होता है। काम वासना भले कर्म में नहीं किया, लेकिन मनसा में आया, स्वप्न में आया, स्वप्न तो हमारे वश में नहीं होते हैं, संकल्प चलो हमने वश में हमारे हैं, हम उनको रोकेंगे, कोई संकल्प आया वचन कर्म को रोकेंगे, स्वप्न को तो रोक ही नहीं सकते। तो जब स्वप्न को नहीं रोक सकते पर स्वप्न तक भी ना आए तब कहेंगे संपूर्ण। तो वो संपूर्ण पवित्रता जो ब्रह्मा बाप की थी वो बाबा में अनुभव की, कैसे बाबा लास्ट के दिनों में संपन्न और संपूर्ण होते गए, न्यारे प्यारे होते गए, साक्षी दृष्टा होते गए। पहले तो बाबा हर चीज का ध्यान देते थे, हर चीज, लेकिन धीरे 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 बाबा न्यारे होते गए। हमने वो दादियों में भी देखा, दादी प्रकाशमणि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, कैसे सारा एडमिनिस्ट्रेशन किया, यज्ञ को कितना आगे बढ़ाया, दीदी और दादी ने मिल करके कैसे इस संस्था को दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ाया, विदेशों की सेवाएं शुरू हुई। वो ब्रह्मा बाबा के समय तो कुछ भी नहीं था, थोड़े हजारों में इस गिनती के सेंटर्स थे, हजारों में थोड़े भाई बहने थे, और अभी देखो। तो क्या इसका राज है? इसका राज यही है कि ब्रह्मा बाप की इसका सकाश, दादियों की वो सकाश अभी मिल रही है, भले वो साकार में नहीं है लेकिन वो संपन्न और संपूर्ण बनी। तो दादियों को भी देखा अंत में कैसे न्यारी प्यारी होती गई, और आज वो तपस्या फल रंग ला रही है। तो ब्रह्मा बाप जो संपन्न बने, संपूर्ण बने और फरिश्ता बने, लेकिन घर तो वापस जा नहीं सकते, क्योंकि सबको एक साथ जाना है। लेकिन शुरू में ये सब पता नहीं था। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई और इतने सब आ गए बाबा के पास, तो बाबा उस समय कहते थे शिव बाबा कि बच्चे हम सब साथ रहेंगे, साथ ही चलेंगे, साथ ही वापस जाएंगे, साथ सब साथ में होंगे। तो बच्चों ने क्या समझा कि कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा क्योंकि साथ में रहना माना शरीर तो नहीं, शरीर छोड़ा तो गया ना, साथ खत्म, तो यही समझा उन्होंने। तो साथ रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही समझा, हम सब साथ में रहेंगे। तो यज्ञ में तो सब साथ में थे ही, ऐसे नहीं कि नहीं थे, 14 साल तो सब साथ में ही थे। और उस समय कितना हाहाकार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, दूसरा विश्व युद्ध उन्हीं 14 सालों में हुआ, भारत का बंटवारा हुआ उन्हीं 14 सालों में, बहुत सारे भूकंप आए, सुनामी आया। तो तीनों ही जो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे ना, अणुयुद्ध का साक्षात्कार, ग्रह युद्ध का साक्षात्कार, प्राकृतिक आपदाओं का साक्षात्कार, और बाबा ने ये सब देखा और देखा, सब नष्ट हो गया साक्षात्कार में। तो वही 14 साल में प्रैक्टिकल में भी हुआ, लेकिन बाबा कहते थे कि ये तो रिहर्सल है, ये तो एक ट्रेलर है, फाइनल तो आना है। तो फाइनल आना है, पर वो उस समय वो अनुभव करते थे ये कैसे हो रहा है परिवर्तन। वो 14 सालों में कितना परिवर्तन आ गया, सारे संसार में परिवर्तन आ गया 1936 से लेके 1950 तक। जो विज्ञान भी उसी समय पनपा, उसी समय ये वैज्ञानिकों को जैसे अनुभव हुआ कि एटम जो है, वो एटम को हम एक्सप्लोड करते हैं तो प्रोटॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और वो अगर प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन को विस्फोट किया तो उसमें इतनी एनर्जी पैदा होती है जिससे वो बॉम्ब बन सकता है। तो ये उन्हीं दिनों में ही आविष्कार हुआ। पहले तो समझते थे एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है प्रकृति का, इसीलिए वो एटम शब्द भी कहाँ से लिया, आत्मा से लिया, आत्मा, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसका विभाजन नहीं होता है, जिसका जो मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं। तो प्रकृति का जो सबसे छोटा पार्टिकल वो एटम समझा, लेकिन फिर पता चला नहीं एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब है, और उनके अगर विस्फोट किया तो जो एनर्जी निकलेगी वो बहुत घातक हो सकती है, जिसको आइंस्टाइन ने अपना इक्वेशन दिया E=mc2। विज्ञान जिन्होंने पढ़ा होगा, वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो मास इनटू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट, जितनी लाइट की वेलोसिटी या स्पीड है उसको अगर उसका मास से मल्टीप्लाई करो, इतनी एनर्जी ताकत उसमें से निकलती है। तो इसलिए लाइट क्यों कहा, क्योंकि जो प्रकाश है वो प्रकृति में सबसे तेज स्पीड वाला है। जो 5 तत्व है ना, उसमें प्रकाश का जो की जो स्पीड है वो सबसे तेज है। आवाज की स्पीड से भी प्रकाश की स्पीड ज्यादा है। हम जो बोल रहे हैं आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन देखना तो तुरंत हो जाता है। तो लाइट की स्पीड सबसे तेज है, और इसलिए बताते विज्ञान में कि सूरज से जो किरणें निकलती है ना, धरती तक पहुंचती है, तो जो जैसे सूरज की किरण निकली और धरती तक पहुंचने में उसको 8 मिनट लगते हैं। प्रकाश की किरण को सूरज से धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट के बाद ही वो प्रकाश धरती तक पहुंचता है, इतना दूर है सूरज। लेकिन अगर मन से सूरज तक पहुंचना है तो कितना, 1 सेकेंड भी नहीं, सोचा और पहुंच गए सूरज में। तो मन की स्पीड कितनी है, मन की स्पीड कितनी है, गिनती कर सकते हैं? कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं मन से, सूरज से भी पार। बाबा कहते हैं पांच तत्वों से भी पार और एकदम चांद सितारों से दूर परम धाम तक भी पहुंच जाते एक सेकंड में। तो जो उसमें से तो मन की स्पीड से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी बेअंत होगी, आप सोचो। एक मास्क, एक पार्टिकल से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी तो सूक्ष्म है ना। तो इसीलिए बाबा मन की शक्ति को अनुभव कराते हैं मन से। ये सारी स्मृति और विस्मृति का खेल है, जो सोचोगे वो ही अनुभव करोगे। और जैसे हमारी सोच इतनी ऊंची हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उससे सब कुछ बदल जाता है। बस सोच में परिवर्तन लाना है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी यही परिवर्तन किया और फरिश्ता बन गए। लेकिन बाबा कहते हैं घर तो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि घर तो सबको इकट्ठा ही जाना है। इकट्ठा जाएंगे लेकिन कैसे इकट्ठा जाएंगे ये थोड़ी मालूम था। तो मम्मा ने शरीर छोड़ा, फिर दादियों ने कुछ छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा शरीर, तो फरिश्ते बन गए। तो सबको जाना है। अब संदेशियां वतन में जाती है तो हम लोगों का भी वो फरिश्ता रूप देखती है ना। तो सबका फरिश्ता रूप है वतन में, सूक्ष्म वतन में सबका है। वो बताती ना बहने, बाबा ने सारी सभा को इमर्ज किया। तो सारी सभा को इमर्ज कैसे करते हैं? सूक्ष्म में इमर्ज हो गए तो सबका सूक्ष्म शरीर वतन में है ना। तो अनुभव कभी करते हो वो सूक्ष्म वतन में मेरा सूक्ष्म शरीर है, लाइट का आकार है, कितना हल्का होगा, कितना विशेष होगा, लाइट ही लाइट और कितना हल्का वो मेरा शरीर होगा। आज भी बाबा ने कहा वो कर्म भोग को भी कर्म भोग नहीं समझो। अगर खुशी है अंदर जो प्राप्ति है उसकी भेंट में वो कर्म भोग भी सूली से कांटा हो जाता है। तो मन की वो शक्ति है, तो ऐसी शक्ति बाबा हमें देते हैं। तो इसीलिए हमें भी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है, ये हमारा आगे का लक्ष्य है। अभी ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बनना है, फिर घर जाना है। तो घर जाना है तो जहाँ जाना है बस उसको याद करना है। आप यहाँ आए तो वहाँ मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, कितना मन में आया होगा। इन्हीं दिनों में आपको कोई मिला होगा, आपको कहा होगा हम आपको उस दिन मिलेंगे, तो आपने कहा होगा नहीं भाई मैं उस दिन तो वहाँ नहीं होगा, मैं तो मधुबन में होगा। तो कितना याद किया मधुबन, क्योंकि जहाँ जाना होता है वहाँ उस स्थान को याद किया जाता है। तो हमको अभी कहाँ जाना है? हाँ, परम धाम जाना है। पिछला महीना जुलाई का महीना बड़ी दीदी का महीना था, तो बड़ी दीदी हमेशा यही कहती अब घर जाना है, अब घर जाना है। सचमुच हम दीदी को देखते थे, किसने देखा था दीदी को, बड़ी दीदी को? अच्छा 83 में दीदी ने शरीर छोड़ा था, 83 में। तो दीदी के पास कोई भी जाता था ना, मना वो भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी दादी जी के साथ, तो दीदी से कोई भी अगर कुछ बात ऐसे कोई प्रॉब्लम सुनाता था, दीदी कहती थी छोड़ो, ऐसे कहती थी छोड़ो, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो इसीलिए ये दीदी का बड़ा स्लोगन था। और उसी अनुसार कैसे दीदी मुक्त हो गई, अंत में भी दीदी ऐसा न्यारी प्यारी हो गई। दादी प्रकाशमणि को भी देखा। तो फरिश्ता बनना है बस, फिर घर जाना है। पर घर कैसे जाएंगे? संपन्न और संपूर्ण होकर के, कोई भी दाग न रहे। धर्मराजपुरी की सजाएं खाकर तो नहीं जाना है ना। धर्मराज भी सलाम करे हमें, क्योंकि दो ही तरीके हैं पावन बनने के या हिसाब किताब पूरा होने के, एक तो योग बल, दूसरा है सजा बल। तो इसलिए योग बल से ही सब चुकतू करेंगे तो सजा ही नहीं खानी पड़ेगी, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। फिर घर जाएंगे और जितनी सजा खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा वो सिंधी में शब्द आता है जितना एक मानी और मोचरा, मोचरा माना सजा, तो मानी सजा मिलेगी और तो मानी कितनी मिलेगी, रोटी कितनी मिलेगी, सजा खा करके रोटी क्या मिलेगी, जो कैदी होते ना उनको बेचारों को क्या खाना मिलता होगा, सूखा सूखा खाना, तो ऐसा हाल होगा। तो ऐसा हाल, ऐसी हालत में तो नहीं जाना ना, कैसे जाना है, बाबा भी सल्यूट करे। तो ऐसे बाबा के घर जाना है, बाबा के साथ जाना है, साथी बनकर जाना है, तो साथ जाने के लिए समान बनना पड़े, बराती तो नहीं बनना है ना, साथ साथी बनना है। बराती तो बहुत होंगे, शिव की बारात का बहुत गायन है, कितना गायन है, इतना गायन है जो उसमें दिखाते हैं कि भूत पिशाच है ना, वो सब वो भी उसकी बारात में थे, शिव जी की बारात में। तो शिव जी की बारात चली, तो हम सब उस शिव जी की बारात में जाएंगे या साथी बन के जाएंगे, साथी बनना है। तो साथी बनाना है तो साथ ही चलना है, तो साथ जैसा ही बनना पड़ेगा। तो यही आपके लिए बट्टी का लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति।
दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तालियों से। और अभी आमंत्रित करती हूँ हमारे मधुर वाणी ग्रुप को, बेहद के मधुबन घर में हर प्रोग्राम का आयोजन की शुरुआत मधुर वाणी ग्रुप के उमंग उत्साह और ज्ञान की प्रेरणाओं भरे एक नए गीत के साथ किया जाना, ये मधुबन की रीत है। तो उनके साथ ये स्वागत, उनके बिना स्वागत अधूरा रहता है। तो मधुर वाणी ग्रुप के डायरेक्टर और आर्ट कल्चर विंग के मुख्यालय संयोजक हमारे बाबा की फुलवाड़ी के रूहानी गुलाब सतीश भाई एंड उनका ग्रुप हल्दर भाई एंड निरंजन भाई, हम करतर ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस गीत के द्वारा भट्टी के लिए बाबा की प्रेरणाओं का उमंग उत्साह खुद में भरेंगे।
ओम शांति।
धन्यवाद है, धन्यवाद। किस किस को दें? सर्वप्रथम सतीश भाई को धन्यवाद दें, बहुत सुंदर रचना है। धन्यवाद है, धन्यवाद करता या धन्यवाद है, दादी के दिन पर आया लाया दादी की याद है, तपोभूमि में तप करने आया गुलदस्ता साथ है, पद्म पदम सौभाग्यवान है आपकी क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए।
एक बात कहना चाहता हूं, जिसे धन्यवाद आता है तो दिल से हमेशा वही याद आता है, धन्यवाद माना धन्यवाद। तो एक बार धन्यवाद अपने लिए स्वीकार कर लें। बहुत जोरदार, बहुत अच्छे समय पर आप आए हैं। एक ओर दादी जी के दिन हैं, दूसरी ओर राखी भी त्योहार भी है, और तीसरा पांडव भवन में मिलना और आना अपने बहुत बड़ा सौभाग्य है। और दीदियों से मिलना, इनसे मिलकर के लगता है कि हम सब अभी भी दादियों से मिल रहे हैं। और हमारी शीलू दीदी तो जब बोलती हैं तो इतना मिश्री से घुला हुआ, इतना मीठा लगता है कि मन करता है कि दीदी बोलती रहें और सुनती जाएं। तो दीदी अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए, ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्ड बज रहा था। तो एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत
धन्यवाद है, धन्यवाद करता आया धन्यवाद है, दादी के दिन पर आया लाया दादी की याद है, तपोभूमि में तप करने आया गुलदस्ता साथ है। पदम पदम सौभाग्यवान है आपकी क्या बात है। धन्यवाद है धन्यवाद हो करता है। तपस्या भट्टी करने का कोई ही साहस करता है और मधुबन आने का अवसर भाग्य से मिलता है। और मधुबन आने का अवसर भाग्य से मिलता है। अवसर भाग्य से मिलता है। पांडव भवन में रहने का भाग्य बड़ी सौगात है। पद्म पद्म सौभाग्यवान है आपकी क्या बात है। धन्यवाद है धन्यवाद हो। निर्मल और निर्माण बनना है। दादी कहती निमित निर्मल और निर्माण बनना है। करो तपस्या मिटे समस्या तुम्हें फरिश्ता बनना है। करो तपस्या मिटे समस्या तुम्हें फरिश्ता बनना है। हाँ तुम्हें फरिश्ता बनना है। चार दिन में 14 वर्ष की हो। चार दिन में 14 वर्ष की भट्टी का लेना स्वाद है। पद्म पद्म सौभाग्यवान है आपकी क्या बात है। धन्यवाद है धन्यवाद हो। राखी बंधाना है। मन के हाथों में दीदियों से ऐसी राखी बंधाना है। वादा निभाना आँखियों में बाबा को ही बसाना है। वादा निभाना आँखियों में बाबा को ही बसाना है। हाँ बाबा को ही बसाना है। चार धाम कर मधुबन में हो। चार धाम कर मधुबन में मिलती मन की मुराद है। पद्म पद्म सौभाग्यवान है आपकी क्या बात है। धन्यवाद है धन्यवाद करता आया धन्यवाद है। दादी के दिन पर आया लाया दादी की याद है। तप भूमि में तप करने आया गुलदस्ता साथ है। पद्म पद्म सौभाग्यवान है आपकी क्या बात है। धन्यवाद है धन्यवाद हो।